नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरा। सरकार ने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, विधेयक को पास करवाने के लिए एनडीए सरकार के पास ठोस नैतिक और संवैधानिक तर्क नहीं थे। दरभंगा जिले के विभिन्न अंचलों में तैनात 128 राजस्व कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण निलंबित। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश, दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में कल संविधान 131वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान था। लोकसभा में उपस्थित कुल 528 सदस्यों में 298 सांसदों ने इसके पक्ष में और 230 ने इसके विरोध में मतदान किया, जो दो तिहाई बहुमत से कम था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मतदान का परिणाम घोषित किया।
सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक सहित अन्य दो विधेयक संविधान 131वां संशोधन विधेयक से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें पारित करने के लिए पेश नहीं किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने का अवसर गंवाने का आरोप लगाया।
जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश के महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया, बहुत खेद की बात है। और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गवाया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वे लोकसभा में पेश इन विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। परिसीमन को लेकर विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि संविधान में परिसीमन का प्रावधान है और इससे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक नहीं है और इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई संबंध नहीं है।
द फर्स्ट ट्रूथ, सच तो ये है कि ये कोई महिला सशक्तिकरण विधेयक नहीं है। इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। एक महिला सशक्तिकरण विधेयक इसी सदन ने वर्ष 2023 में पारित किया था। ये विधेयक तो भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने का एक प्रयास है।
एंड हाइडिंग बिहाइंड इंडियाज।
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को पारित न करके देश की आधी आबादी के साथ घोर विश्वासघात किया है।
देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है। आधी आबादी को एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था के हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। पूरे प्रकरण में पूरी तरह से कांग्रेस का जो एंटी वुमेन एलायंस है वो पूरा एक्सपोज हुआ।
पूर्व मंत्री और जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक गिरने पर विपक्ष ने महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने का एक अवसर खो दिया है।
एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व ने अथक प्रयास किया कि सर्वदलीय इस बिल को पास किया जाए और जो आधी आबादी का नारा है वो भारत की सच्चाई बने। मुझे लगता है कि आज हर एक विपक्ष के नेता को और खास तौर से उन महिला नेताओं को जरूर सोचना चाहिए एक ऐसा नियम, एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसा कानून जो वाकई में महिला को सशक्त बनाता, राजनीतिक भागीदारी नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का मौका देता, उसको आज महिला का अधिकार को छीना गया है, महिलाओं को वंचित किया गया है।
केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा ने कहा कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक का गिरना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी इसके लिए विपक्ष को माफ नहीं करेगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि गलत इरादे से लाए गए विधेयक का गिरना प्रमाणित करता है कि बहुमत के बल पर विपक्षी दलों के अधिकारों और क्षत्रिय संतुलन को बिगाड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि विधेयक को पास करवाने के लिए एनडीए सरकार के पास ठोस नैतिक और संवैधानिक तर्क नहीं थे।
वुमन रिजर्वेशन पहले से ही पास हो गया और सर्वसम्मति से पास हुआ। पहला बिल ऐसा होगा जो पास करने के बाद बोलती है कि 34 में बिल लागू होगा। करना था तो पहले क्यों नहीं किया गया? असल मुद्दा डिलिमिटेशन का है। ये केवल दिखाने के लिए जो है पहला बिल आगे किया जा रहा है, लेकिन इनको संविधान को खत्म करना है, लोकतंत्र को खत्म करना है, इस हिसाब से ये लोग काम कर।
बिहार कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को शीर्ष नेतृत्व से जोड़ने के लिए सृजन साथी जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने पटना स्थित पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस डिजिटल ड्राइव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी अब डिजिटल तरीके से सदस्यता अभियान शुरू करेगी। इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया जाएगा।
बिहार एक ऐसा राज होगा, पहला राज होगा जहां हम डिजिटली सृजन साथी जनसंपर्क अभियान चलाएं। इसका उद्देश्य बिहार कांग्रेस के लिए एक पारदर्शी और सशक्त डिजिटल प्रणाली बनाना है जो संगठन के पदों को सीधे जमीनी स्तर से मेहनत और सक्रियता से जोड़े।
राज्य सरकार ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव की सुरक्षा बढ़ा दी है। दोनों को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जिले के विभिन्न अंचलों में तैनात 128 राजस्व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पर सामूहिक अवकाश लेकर विभागीय कार्यों में बाधा डालने का आरोप है। वहीं शिवहर की जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने पिपराही के राजस्व कर्मचारी लालदेव कुमार यादव को सामूहिक अवकाश पर रहने समेत अन्य कारणों से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पूर्णिया पूर्वी के राजस्व कर्मचारी लाल बाबू रजक और रिकॉर्ड रूम की महिला कर्मी रूमी कुंडू को 40,000 रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ये दोनों कर्मी रोक सूची से जमीन का विवरण हटाने के लिए शिकायतकर्ता से घूस ले रहे थे। बिहार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत चल रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वे में देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आयोजित कला संस्कृति विभाग की बैठक में ये जानकारी दी गई। राज्य के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में समर्थ पोर्टल के माध्यम से छात्रों का नामांकन होगा। इसके अलावा बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी इसी पोर्टल के माध्यम से नामांकन लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जुलाई से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र से नामांकन की नई व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। हालांकि मगध विश्वविद्यालय बोधगया और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में यह व्यवस्था फिलहाल लागू नहीं होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू होगी। अभ्यर्थी 14 जून तक आवेदन कर सकेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज सुबह राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी हिस्से में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। राज्य के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। डेहरी का अधिकतम तापमान 41.6, औरंगाबाद का 40.8, गया जी का 40.4 और पटना का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी शेखर कृष्ण यादव को गुजरात के सानंद से गिरफ्तार किया है। आरोपी बांका जिले के बेलहर थाना के खरौंदा गांव का रहने वाला है। मधेपुरा से पूर्णिया कोर्ट जा रही कोसी एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में कल रात अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जान बचाने के लिए कई यात्री ट्रेन से कूद गए। रेलवे कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। और अब खबरें खेल जगत से। राजगीर खेल अकादमी में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप के महिला वर्ग में ओडिशा की टीम चैंपियन बनी है। कल खेले गए फाइनल मुकाबले में ओडिशा ने बिहार को 27-0 से हराकर खिताब जीता। बिहार की टीम को उप विजेता की ट्रॉफी से संतोष करना पड़ा। गोपालगंज में खेले जा रहे रणधीर वर्मा अंडर 19 वनडे क्रिकेट ट्रॉफी में गोपालगंज की टीम ने पटना को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड के सजुआ गांव में 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से आए पहलवानों ने भाग लिया। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 से खेला जाएगा। एक अन्य मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। यह मैच शाम 7:30 से हैदराबाद में खेला जाएगा। इधर अहमदाबाद में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटन्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है संसद में संग्राम, लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन विधेयक को नहीं मिला जरूरी 2/3 बहुमत। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखता है कांग्रेस को शाह की चेतावनी, मातृशक्ति मांगेगी हिसाब, नहीं मिलेगा रास्ता। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है जनगणना में बढ़ चढ़ कर भाग लें राज्यवासी। दैनिक भास्कर ने अपने विशेष रिपोर्ट में लिखा है पॉलिटिकल चंदे के नाम पर टैक्स चोरी, बिहार झारखंड के 2000 संदिग्ध करदाताओं को आयकर का नोटिस। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं 4 मई के बाद होगा बिहार कैबिनेट का विस्तार, अधिकतर पुराने चेहरे रहेंगे बरकरार। आज अखबार लिखता है बिहार में जारी रहेगी शराबबंदी, सम्राट। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरा। सरकार ने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा विधेयक को पास करवाने के लिए एनडीए सरकार के पास ठोस नैतिक और संवैधानिक तर्क नहीं थे। दरभंगा जिले के विभिन्न अंचलों में तैनात 128 राजस्व कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण निलंबित। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश, दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।